मेरे बहुत बहुत प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर यानी कि वर्ष 2018 का अंतिम दिन, 2018 अलविदा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उस दिन की जो हम लोगों के पास आने की प्रतीक्षा कर रहा है के स्वागत में, मैं आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यह शुभकामनाएं मेरे अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से है, मेरे एकेडमी की पूरी टीम की ओर से है और पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से भी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं मैं आज आपको इसलिए एडवांस में दे दे रहा हूं फ्रेंड्स कि 1 जनवरी को जनरली हम लोग छुट्टी रखते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि आपके अपने आनंद की जो तरंगे हैं उनमें दखलंदाजी करें, तो आप पूरी तरह से कल फ्री रह सकें। इसी बात को ध्यान में रख करके कल डी जो आपके डेली ऑडियो लेक्चर है वह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मित्रों, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। और आप सबके स्वागत के साथ ही अब मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगा अपने उन 12 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं धनंजय सिंह चंदेल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, मनीष कुमार सिंह हिनौता उत्तर प्रदेश से, शिवराज जगत आपका गांव है पिसांगन जिला अजमेर राजस्थान से, रजनी कंवर आपका भी वही गांव है पिसांगन जिला अजमेर राजस्थान से, सुशील कुमार मिश्रा आपका गांव है लछीरामपुर जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, अनुज धनावत आप हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, राहुल कुमार बिहार शरीफ बिहार से, फैजा गांव है आपका दरियापुर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, शम्स तबरेज आप है मेजरगंज से जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, तारा शंकर मुखर्जी आसनसोल पश्चिम बंगाल से, रविंद्र कुमार आपका गांव है सुगिरा जिला महोबा उत्तर प्रदेश से, और विवेक त्रिपाठी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो धनंजय, मनीष, शिवराज, रजनी, सुशील, अनुज, राहुल, फैजा, शम्स, ताराशंकर, रविंद्र और विवेक, आप सभी 12 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे अंडमान निकोबार द्वीप पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन एक छोटी सी सूचना तो नहीं कहना चाहिए बल्कि आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं। और कुल मिलाकर उत्तर यह है मित्रों कि बहुत से मेल आए हैं और उसमें खासकर अभी जो 3 से 17 मार्च की क्लासेस 15 दिन की होने वाली हैं उसके बारे में कुछ इंक्वायरीज हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं। जिज्ञासाएं खासकर डिस्काउंटेड सीट को लेकर के हैं। आप लोग अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां क्लासेस का जो मेनू में दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो आपको क्लासेस के बारे में सारी जानकारियां डिटेल्स में मिल जाएंगी। दरअसल अभी जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं स्टूडेंट, उन्हें 2000 रूपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके लिए कुछ सीट्स हम लोग रखते हैं। तो जो मैंने अनाउंस किया था उसमें यह था कि अब ये सीट लगभग फुल होने वाली है, डिस्काउंटेड सीट याद रखिए। इसके बाद जो सीट्स बचेंगी उस पर पूरी फीस लगेगी। तो सूचना में यही कहा गया था कि जो उस 2000 रूपये के डिस्काउंट का लाभ लेना चाह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि कभी भी ये सीट खत्म हो जाएंगी और इसके बाद बट नेचुरल है कि फिर जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे, रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे लेकिन वे पूरी फीस पर होंगे। बस ये छोटी सी सूचना थी। और कुछ लोगों ने जो जानना चाहा है मैं वो भी बता दूं कि 15 दिन की ये जो क्लासेस होती हैं फ्रेंड्स, ज्यादातर क्लासेस मैं ही लेता हूं, 8-10 क्लासेस दूसरे गेस्ट लेते हैं, ये एक दिन में 6 घंटे की क्लासेस होती हैं। एक दिन में 6 घंटे की, डेढ़ डेढ़ घंटे की एक क्लास होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने सिद्ध किया है इससे पूर्व के विद्यार्थियों ने, कि दिन भर आप क्लास को जिस तरीके से एंजॉय करते हैं, शाम को आपके चेहरों पर थकान नहीं होती है, आप उतने ही ऊर्जावान दिखाई देते हैं और लगातार 15 दिन आप इस क्रम को निभाते चले जाते हैं। तो आप अपने दिमाग में आतंकित मत हो जाइएगा कि बाप रे 15 दिन तक और 6-6 घंटे रोज की कैसे हम क्लास अटेंड करेंगे, वो तो आप यहां आने के बाद ही उसे महसूस कर सकेंगे। तो मित्रों, ये कुछ सूचनाएं थी जो आप लोगों ने जानना चाहा था। लेकिन आइए मुख्य विषय पर आने से पहले कुछ दूसरे जो खबरें हैं उनको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, न्यूज में आपने सुना और अखबारों में भी है कि मृणाल सेन जो कलकत्ता के रहने वाले थे और हिंदी सिनेमा के एक महान निर्देशक थे मृणाल सेन, वो नहीं रहे और ईश्वर ने उनको एक लंबी आयु दी। 95 वर्ष की उनकी आयु रही। भुवन सोम उनकी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी, उनकी मृगया फिल्म मैंने देखी भी है। और जो मृणाल सेन है वो वैचारिक दृष्टि से मार्क्सवादी माने जाते थे। जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो शायद मेरे कहने का आशय समझ गए होंगे कि मार्क्सवादी का क्या मतलब है। तो उनकी फिल्मों में आपको बकायदे जो आर्थिक रूप से शोषित लोग हैं, जो हाशिए में पड़े हुए लोग हैं, जो गरीब है, मजदूर है, इनकी जो वेदना है, इनकी जो पीड़ा है, वो बहुत बहुत गहराई के साथ महसूस करने को मिलेगी। बहुत बड़ा कद मृणाल सेन जी का है फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे कि हम सत्यजीत राय वगैरह को जानते हैं, ऋतिक घटक जी को जानते हैं, ऋषिकेश मुखर्जी को जानते हैं, उसी कद के फिल्म निर्देशक मृणाल सेन थे। तो मृणाल सेन जी को मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अखबारों में एक खबर आई है, ये रेफरेंस के रूप में आपको यूज करने के लिए मैं बता रहा हूं, कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अभी बने हैं। कमलनाथ जी ने एक घोषणा की है, मुझे लगता है कि इस तरह की पहली घोषणा है, इसलिए मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा यह की है कमलनाथ जी ने कि अब से राज्यों में जो भी योजनाएं घोषित की जाएंगी, कि ये बांध बनेगा, ये सड़क बनेगी या जो भी योजनाएं घोषित की जाएंगी, उनकी घोषणा अब मंत्री नहीं करेंगे, यानी कि राजनेता नहीं करेंगे, उनकी घोषणा अब अधिकारी करेंगे। जिले का कलेक्टर कर सकता है, एसडीएम कर सकता है, जिस तरह की जो योजना होगी उसकी घोषणा अधिकारी करेंगे। और अधिकारी क्यों करेंगे, इसके बारे में उनका बहुत स्पष्ट मत है। वो है कि अगर जनता पूछना चाह रहे कि भाई ये योजना क्यों नहीं पूरी हो रही है, तो अधिकारियों से पूछे, नेताओं से ना पूछे, अधिकारियों से पूछे। और अधिकारियों में भी यह जिम्मेदारी की भावना आए कि भैया मैंने घोषणा की है तो जनता मुझसे पूछेगी, तो इसे पूरा करने का दायित्व तो भी मेरा है। तो ये नए तरह का विचार है, इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये बहुत अच्छा रेफरेंस है जो सिविल सर्विसेज के बारे में आप पूछे गए प्रश्नों पर आप उपयोग में ला सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे दो सवाल खड़े होते हैं। पहला तो यह, जब हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, है ना, देखिए क्रिटिकली एनालाइज कर, आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, केवल मूल्यांकन नहीं करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो दोनों पक्ष को देखेंगे। पहली बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे राजनेता अपने दायित्वों से बचना चाह रहे हैं कि भैया अब जनता हमारे पास ना आए, जबकि जनता उन्हीं के पास जाएगी क्योंकि उन्हीं ने, जनता ने उन्हीं को चुना है, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि इससे जो प्रशासन है उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी के कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए एक कलेक्टर है और उसने घोषणा कर दी कि भैया ये जो सड़क है ये 3 साल में बनेगी, और पता लगा कि 3 साल में 3 कलेक्टर आ गए, तो जो पहले ने घोषणा की थी वो और कहीं है, वो मंत्रा सचिवालय में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि यह घोषणा इस बात को भी इंश्योर करे कि अधिकारियों के तबादले बहुत तेजी से नहीं किए जाएंगे, वो अगर कहीं पोस्ट किए जाएंगे तो उन्हें कुछ समय तक वहां रहने दिया जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से दो पॉइंट इस घोषणा को लेकर के जो मेरे दिमाग में उभरे हैं वो आप लोगों के सामने मैंने रखा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। एक जो बात पिछले सप्ताह से चली आ रही है, आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने दो बातें कही हैं। पहली तो यह कि वो सीरिया से अपनी सेना को वापस बुला लेंगे, और दूसरा अफगानिस्तान से भी वो अपनी सेना को वापस बुलाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है और इसके पीछे ट्रंप ने सीधी सी बात कही कि भैया हमने दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली हुई है, लोग अपनी अपनी रक्षा करें, अमेरिका ही क्यों अपना सबका खर्चा वहन करे, ये उनका अपना विचार है। तो दोस्तों जो अफगानिस्तान से जो अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुलाने की बात की है, इसका भारत पर डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा। और आप 2013 के मेंस का पेपर उठा करके देखेंगे, जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर, तो उस समय भी अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी और बकायदे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अब भारत अपनी सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाएगा, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा इसके बारे में मेरे पास बताने के लिए अभी वक्त नहीं है, लेकिन आज मैं आपको एक क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं जो डॉक्टर दिलीप चौबे जी की है, बहुत अच्छा लिखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर, उसे आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यह बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो मित्रों ये कुछ खबरें थी, आइए अब मुख्य मैं विषय पर आता हूं। मुख्य विषय के लिए मैंने कहा कि अंडमान निकोबार, और यह मुख्य विषय क्यों है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हमारे प्रधानमंत्री अभी वहां गए थे और उन्होंने कुछ घोषणाएं की है वहां के विकास के लिए और कुछ प्री एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ चीजें हम सबको दी हैं। प्री एग्जामिनेशन के लिए जो चीजें दी हैं, देखिए उसमें यह है कि वहां जो द्वीप है अंडमान निकोबार में, तो बहुत से द्वीप हैं और हम लोग वहां होकर के भी आए हैं, 2004 में गए थे, तो वहां के द्वीप के कुछ उन्होंने नाम बदले हैं। जैसे नील आइलैंड, नील आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है, उसको उन्होंने कहा है शहीद द्वीप, उसका नामकरण किया गया शहीद द्वीप, ये आपको मालूम होना चाहिए कि नील आइलैंड शहीद द्वीप। दूसरा है रास आइलैंड, रास आइलैंड वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रास आइलैंड बेसिकली वहां अंग्रेज वगैरह रहा करते थे, उनकी पार्टियां होती थी बकायदे। जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने देखी कि उनकी बेकरी है और उनका जो लॉन टेनिस खेलने का जो ग्राउंड था वो है, जहां वो पार्टी करते थे, वो सारी चीजें भी वहां हैं। हालांकि थोड़े से काफी कुछ उजड़े हुए रूप में है, पानी के टैंकर्स बने हुए हैं वहां, उनका अपना एक सचिवालय जैसा भी था, बड़ा सा भवन था, हालांकि भवन तो नहीं है उसकी, केवल सीढ़ियां वगैरह रह गए। तो इस तरह की चीजें वहां है रास द्वीप में, उसका नामकरण किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से। और एक हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप बहुत खूबसूरत आइलैंड है, वहां का पानी इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता, वहां हम लोग रात भर रुके भी थे, बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसका नाम उन्होंने दिया है स्वराज्य द्वीप। मित्रों जो अंडमान निकोबार है वो आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में वो स्थित है, और हमारे यहां की जलवायु के हिसाब से वह उष्णकटिबंधीय है, और आप देखेंगे कि वह भूमध्य रेखा के काफी नजदीक है, वहां का जो टेम्परेचर है, मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि जो क्लास के स्टूडेंट है इसके आधार पर बहुत सी चीजों को समझ जाएंगे कि उसका जो मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। समुद्र के किनारे है तो आप पता लगा सकते हैं, और चूंकि वो भूमध्य सागर के काफी नजदीक है, क्योंकि 6 डिग्री इसका अक्षांश है, 6 degrees to 14 degrees अक्षांश, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां का टेम्परेचर क्या होगा, यहां वर्षा कितनी होती होगी, यहां फॉरेस्ट किस तरीके के होंगे, क्योंकि यहां के फॉरेस्ट को लेकर के, कोरल्स वगैरह को लेकर के प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री जो हमारे गए थे वहां 75 साल पूरे होने के अवसर पर गए थे, और ये 75 साल पूरे हुए किस बात के थे, हुआ ये था कि 29 दिसंबर 1943 को, 29 दिसंबर याद रखिए 1943 को जापान ने इसको अपने राजनीतिक नियंत्रण में ले लिया था। इससे पहले जो अंडमान निकोबार था ये ब्रिटिश अधिकार में था। सेलुलर जेल का नाम आपने सुना, वो सेलुलर जेल राउंड शेप में बना हुआ है, सेलुलर इसीलिए उसका नाम है सेलुलर। वहां भी हम लोग गए, वहां रात में बकायदे का लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है, आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। सेलुलर जेल जहां पर खासकर भारत और अफ्रीका के जो इनके राजनीतिक बंदी हुआ करते थे उनको देश निकाला दिया जाता था, इसलिए उसे काला पानी भी कहते हैं। हालांकि वहां का पानी ऐसा काला पानी नहीं है, लेकिन वो सजा गृह था एक तरीके से, वो उस द्वीप में सजा याफ्ता लोग रहते थे, वो क्या अंडमान निकोबार द्वीप था, तो ब्रिटिश के अधिकार में था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई 1939 में, उसके बाद बारे में आप जानते हैं। तो 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो देखिए उस एक तरफ कौन कौन थे, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये सब एक तरफ थे। दूसरे तरफ कौन थे? इटली, जर्मनी, जापान, ये सब एक तरफ थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो भारत में अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि यार ये बहुत अच्छा मौका है कि ब्रिटेन के खिलाफ हम अपना एक युद्ध हम भी छेड़ दें। एक तो ब्रिटेन वहां परेशान है ये सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो अगर हम युद्ध छेड़ देंगे ब्रिटेन के खिलाफ तो ब्रिटेन हमको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो दूसरी जगह भी उलझा हुआ है, तो हमारा देश आजाद हो जाएगा, लेकिन अब छेड़े कैसे। तो उन्होंने नीति निकाली कि अभी ब्रिटेन के खिलाफ जो दूसरा गुट है जिसमें जर्मनी, इटली और जापान वगैरह हैं, इनसे मदद ली जाए, कि ब्रिटेन के खिलाफ ऑलरेडी लड़ ही रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस भारत से चुपके से निकले, इसके बाद आप इतिहास में पढ़ेंगे कि वो बकायदे हिटलर से मिले, फिर जापान गए, जापान से भी मिले, तो वो जापान के साथ मिलकर के, जापान, इटली और जर्मनी के ग्रुप में शामिल होकर के, आप कह लीजिए कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, उन्होंने एक सशस्त्र स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिया, और उसमें आप जानते हैं सिंगापुर वगैरह में फिर जाकर के इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज वगैरह की स्थापना की। तो उस युद्ध के दौरान 1943 में, जो मैंने डेट बताई 29 दिसंबर 1943 में, जापान ने इस अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया, यानी कि ब्रिटिश सेना को यहां से हरा करके इस पर कब्जा कर लिया। और आप देखते हैं कि 43-45 में जापान बहुत तेजी से इस एरिया को जीतता चला जा रहा था। उसी से तो परेशान होकर के फिर अमेरिका ने 1945 अगस्त में उसके ऊपर बम गिरा दिया, तो ये जापान के कब्जे में आ गया था। सुभाष चंद्र बोस जापान का सहयोग कर ही रहे थे। तो 30 दिसंबर को 1943 में सुभाष चंद्र बोस यहां आए और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का तिरंगा फहराया। याद रखिए, इंडियन नेशनल आर्मी का तिरंगा 30 दिसंबर, उसके 75 साल पूरे हुए, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री अंडमान निकोबार गए थे। ये थोड़ी सी अंडमान निकोबार के बारे में जानकारी है। दोस्तों, वक्त ज्यादा नहीं है कि मैं आपको और कुछ बता सकूं, लेकिन अंडमान निकोबार आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह है एक स्पेशल ओकेजन है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: निशा निमोरिया, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, शिवम मिश्रा, अनुपम शुक्ला, रोशनी और योगेश सातव भोपाल से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब वक्त आ गया है कि इस डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप सबके साथ मिलकर इस वर्ष 2018 को अलविदा कहूं। लेकिन मित्रों, अलविदा कहने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये कि इस सन 2018 के दौर में आप सबसे इस डेली ऑडियो लेक्चर को जितना प्यार मिला है, जितना स्नेह मिला है, जितना सम्मान मिला है, वह काबिले तारीफ है। और सच पूछे तो यह आपकी तारीफ, आपका सम्मान, आपका स्नेह ही वह वास्तविक ऊर्जा है जो हमारी पूरी टीम को लगातार प्रोत्साहित करता रहता है कि हम लोग इसमें लगे रहें और पहले से भी ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों तक चीजें पहुंचाते रहें। तो मित्रों, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही यह आशा भी व्यक्त करता हूं कि वर्ष 2019 में भी आप लोगों का इसी तरह से भरपूर प्यार हमारी टीम को मिलता रहेगा। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आइए मिलकर कहते हैं कि अलविदा 2018, और साथ ही यह भी कहते हैं कि वर्ष 2019 आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।